नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लगातार बढ़ रही बादल फटने की घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के दिए निर्देश। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर दिया बल। भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर झूठी गारंटियां देने और प्रदेश को आर्थिक संकट में डालने का लगाया आरोप। राष्ट्रीय लोक अदालतों में राज्य में आपसी सहमति से हुआ 65,000 से अधिक मामलों का निपटारा। और प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड कल घोषित करेगा 10वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश विश्वविद्यालय के आपदा अनुसंधान केंद्र को बादल फटने की घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के निर्देश दिए हैं। शिमला में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश में बादल फटने की घटनाएं लगातार होने से मानव जीवन सहित संपत्ति को भारी नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को क्षमता निर्माण सुदृढ़ीकरण के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 6 करोड़ रुपए आवंटित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि आपदा का विस्तृत अध्ययन, खतरा आकलन और तकनीकी मूल्यांकन से जुड़ी सभी राज्य स्तरीय अनुसंधान व विकास गतिविधियां विश्वविद्यालय के इसी केंद्र के माध्यम से संचालित की जाएंगी। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और पर्यटन निगम के अध्यक्ष आरएस बाली भी इस दौरान मौजूद रहे। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया है, ताकि कोई भी विकास की मुख्य धारा से वंचित न रहे। वे आज कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के शुभारंभ पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सामाजिक समरसता और समावेशी विकास अत्यंत आवश्यक है। राज्यपाल ने कहा कि ऐसे सम्मेलन समाज को नई दिशा देने और सामाजिक संवाद को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर उपलब्ध करवाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि युवाओं और महिलाओं का सशक्तिकरण विकसित भारत के निर्माण का मजबूत आधार बना है। दिल्ली से शिमला के लिए हवाई सेवाएं कल 10 मई से दोबारा बहाल होने जा रही हैं। ये सेवाएं मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन संचालित की जाएंगी। इसके अलावा शिमला से धर्मशाला के लिए भी सोमवार 11 मई से हवाई सेवाओं की शुरुआत होने जा रही है। इस रूट पर मंगलवार और रविवार को छोड़कर सप्ताह में 5 दिन हवाई सेवाएं होंगी। इन सेवाओं के शुरू होने से राज्य में हवाई सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि इससे राज्य में पर्यटन व व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इनका उद्देश्य पंचायतों को स्थानीय शासन सेवा वितरण में सुधार करने और सामुदायिक नेतृत्व वाली पहलों के माध्यम से सतत विकास की दिशा में प्रगति करने के लिए प्रोत्साहित करना है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सोदान सिंह ने कहा है कि प्रदेश में विकास पूरी तरह ठप है और कांग्रेस सरकार ने हिमाचल को आर्थिक रूप से दिवालिया करने का काम किया है। मंडी में आज भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने 3.5 वर्ष के कार्यकाल में हर मोर्चे पर विफल रही है। सोदान सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाएं बंद कर आम जनता के साथ धोखा किया है। सम्मेलन में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस जिन झूठी गारंटियों के साथ सत्ता में आई थी, वही गारंटियां आज जनता के दिलों में पीड़ा बन चुकी है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी और पेंशनरों सहित हर वर्ग कांग्रेस सरकार की नीतियों से परेशान है। प्रदेश में शहरी निकायों में 17 मई को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार लगातार जारी है। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सोलन नगर निगम के तहत गंज बाजार में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की 3.5 वर्ष की कार्यप्रणाली निराशाजनक रही है और इन चुनावों में सरकार की नाकामी ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा।
नगर निगम के चुनाव जो है वो हो रहे हैं, उनके लिए मुद्दों की कमी नहीं है, क्योंकि पार्टी के सिंबल पर चुनाव हो रहा है। और सीधी बात है इसमें कि प्रदेश सरकार की 3.5 वर्ष की जो असफलताएं हैं, जो जन विरोधी नीतियां हैं, वो अपने आप में मुद्दा है। शहर में मुझे लगता है कि लोगों को बहुत ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वर्तमान कांग्रेस की सरकार झूठ बोल करके सत्ता में आई थी और झूठ बोल करके कॉरपोरेशन में भी आई।
ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्सेंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश सहित प्रदेश में भी आज राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया। लोक अदालत का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तरीकों से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में राज्य की सभी अदालतों में लोक अदालतें लगाई गईं। इन अदालतों में 140 बेंचों के समक्ष 110,260 मामले लाए गए, जिनमें से 65,793 मामलों का निपटारा किया गया। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में महाशुभ आर्ट की अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक कला प्रदर्शनी आज शुरू हुई। 14 मई तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का कांग्रेस नेता व पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि कलाकारों ने कैनवस पर रंगों के माध्यम से सामाजिक सरोकार, पहाड़ी संस्कृति और समसामयिक मुद्दों को उकेरा है, जो सराहनीय है। बाद में मीडिया से बातचीत में प्रतिभा सिंह ने शिमला के कमला नेहरू अस्पताल को शिफ्ट करने के अपनी ही सरकार के फैसले पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जनता की भावनाओं और उनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए वे इस मुद्दे पर सरकार से बात करेंगी।
कमला नेहरू हॉस्पिटल इसीलिए बनाया गया था कि जो विमेन है उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उन्होंने बच्चे को जन्म देना है, उसकी केयर करनी है और आज भी इसी के लिए जाना जाता है। जब कोई महिला आती है, प्रसूता होनी है, उसने बच्चे को जन्म देना है तो उसको रेफर किया जाता है कि आप कमला नेहरू हॉस्पिटल जाएं। अब ये इंस्टीट्यूशन कहीं और तब्दील होगा तो स्वाभाविक है कि उनको तकलीफ होगी, तो इसके लिए जो भी डिफिकल्टीज है वो सरकार से बात करेंगे, उनसे विचार विमर्श करेंगे और जो निर्णय वो लेगा वो सबको मान्य होगा।
प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं की वार्षिक परीक्षा का परिणाम कल 10 मई को घोषित करेगा। बोर्ड के सचिव डॉ. विशाल शर्मा ने बताया कि परिणाम सुबह 11 बजे घोषित किया जाएगा और इसे बोर्ड की वेबसाइट पर भी देखा जा सकेगा। इस बार मार्च माह में 93,564 विद्यार्थियों ने प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा दी थी। ग्रामीण विकास व पंचायती राज सचिव सी पाल रासू ने पंचायत चुनाव के चलते आज पालमपुर में स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने पंचायत चुनावों को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। उन्होंने स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल से जुड़े सभी निर्वाचन नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने पर बल दिया। छोटे उद्योगों और स्टार्टअप्स को नई दिशा देने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ओर से शिमला में 2 दिवसीय मंथन मीट का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य तकनीक और नीतिगत सुधारों के माध्यम से MSME क्षेत्र को मजबूत बनाना है। इस आयोजन में देश भर से छोटे उद्यमी और वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। MSME व स्टार्टअप्स कमेटी के चेयरमैन ज्ञानचंद मिश्रा ने बताया कि कार्यक्रम में उद्यमियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की भी जानकारी दी गई ताकि वे अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकें।
सरकार की जो योजनाएं हैं उनको MSME को बताना, क्या ग्रांट्स हैं, क्या सब्सिडी हैं, कैसे लोन पा सकते हैं, कैसे अपने को आगे बढ़ा सकते हैं, कंप्लायंस कैसे करना है, सरकार की जो विभिन्न पॉलिसीज हैं उनको कैसे ऑब्जर्व करना है, इन सब चीजों को लेकर के वो DFO ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं, वो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कंडक्ट करवाते हैं MSMEs के लिए अपने क्षेत्रों में। सो पूरे देश के 55 DFO यहाँ पर मिनिस्ट्री ने नॉमिनेट किए हैं जो आपके यहाँ होटल में अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं।
भाजपा ने नगर निकाय चुनाव में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने के मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। पार्टी कार्यालय के अनुसार धर्मशाला नगर निगम में 5 जबकि नाहन नगर परिषद में पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे 1 उम्मीदवार की प्राथमिक सदस्यता को निलंबित किया गया है। शिमला स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में 4 नगर निगमों में होने वाले चुनावों के लिए वॉर रूम बनाया गया है। वॉर रूम के प्रभारी हरिकृष्ण हेमराल ने आज अन्य सदस्यों के साथ कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि वॉर रूम का मुख्य कार्य फील्ड में पार्टी पदाधिकारियों को चुनाव से संबंधित अपडेट करना, दैनिक आधार पर चुनाव प्रचार से जुड़ी रिपोर्ट लेना और पार्टी की ओर से जारी दिशा निर्देशों का उन तक पहुंचाना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लगातार बढ़ रही बादल फटने की घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के दिए निर्देश। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर दिया बल। भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर झूठी गारंटियां देने और प्रदेश को आर्थिक संकट में डालने का लगाया आरोप। राष्ट्रीय लोक अदालतों में राज्य में आपसी सहमति से हुआ 65,000 से अधिक मामलों का निपटारा और प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड कल घोषित करेगा 10वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।